पृष्ठ संख्या 5। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नाटक की विशेषता को स्पष्ट करते हैं। मेरी दृष्टि में नाटक रंगमंच पर अभिनीत होने के लिए ही होने चाहिए। केवल पढ़ने के लिए लिखा हुआ नाटक वस्तुतः विशिष्ट शैली का उपन्यास या गप है। नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है। विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थ, पद और अर्थ के सहित सहित ब्रैकेट में साथ साथ ब्रैकेट क्लोज रहने वाली चीज है, वह श्रव्य है। नाटक में शब्द होते हैं पर और भी बहुत सी बातें हैं। पुराने लोगों ने उसे दृश्य काव्य कहा है। उसमें आंखों का और कानों का भी योग रहता है। चक्षु ग्राह्य होने के कारण वह दृश्य है और श्रुति ग्राह्य होने के कारण श्रव्य। इसीलिए नाट्य समीक्षा अपने आप में एक अहम सवाल है। समीक्षक को नाटक के इस विशिष्ट कला रूप, सामूहिक कला रूप, उसकी मौलिकता और निजी स्वरूप को ध्यान में रखना आवश्यक है। रंगमंच से संबद्ध होने के कारण सारे इतिहास, परंपराओं, रूढ़ियों, मान्यताओं, बाधाओं और विकास स्थितियों से परिचित हुए बिना नाट्य समीक्षक अपने दायित्व को नहीं निभा सकता। हिंदी नाटक के साथ नाटक के विधागत अंतर को न समझने की भारी विडंबना रही नाटककार और समीक्षक दोनों की ओर से। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र व पहले नाटककार हैं जिन्होंने नाटक की माध्यमगत कालगत विशेषताओं को पूरी तरह समझा और इसी विधा को जनसंपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रभावक रूप में जन जागृति, राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना लाने की दृष्टि से सबसे सशक्त माध्यम समझा और व्यक्तिगत ही नहीं सामूहिक प्रयासों द्वारा हिंदी रंगमंच और नाटक इतिहास में एक नई परंपरा को आरंभ करना चाहा। उससे पहले हिंदी क्षेत्र में लोक नाटकों या लोक रंगमंच की परंपरा मौजूद थी, लेकिन उसकी भी सीमाएं थीं। रामलीला, रासलीला, नौटंकी, स्वांग आदि तेजी से बदलते जाते मूल्यों और उस पूरे युग से संबंधित नहीं थे। केवल मनोरंजन ही उनका लक्ष्य था। दूसरी ओर पारसी रंगमंच और नाट्य लेखन विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से ही सही बड़े दर्शक वर्ग को आकर्षित कर रहा था। उनके कुरुचिपूर्ण सस्ते लेखन और प्रस्तुतिकरण ने साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों के मन में वितृष्णा पैदा की। थिएटर और नाटक शब्द यहीं से एक भद्दी कल्पना और अधकचरी मानसिकता के साथ जुड़ गया, एक बदनाम और उपेक्षणीय वस्तु बन गया। नाटक जैसी साहित्यिक विधा के साथ कंपनी का हल्का नाम जुड़ता गया और अभिनय और अभिनेताओं के साथ अप्रिय भाव पैदा होता गया। नाटक पर्दों, नाच गानों, शेरों शायरी, अश्लील दृश्य और हल्के फुल्के मनोरंजन का केंद्र बन गया। परिणामतः रंगमंच ने स्वयं अपना सारा व्यापक अर्थ खो दिया। लोगों की मनोभूमि में रंगमंच एक व्यापक अनुभूति के रूप में लगभग मर गया। नतीजा यह हुआ कि हिंदी नाटककारों के मन में आरंभ से ही रंगमंच की दूरी बनी रही। उनका उद्देश्य ही मानो पारसी नाटकों और रंगमंच के विरोध में नाट्य रचना करना था। पृष्ठ संख्या 6। इसीलिए आरंभ का समूचा हिंदी नाटक भारतेंदु से प्रसाद तक पारसी रंगमंच और नाटकों की प्रतिक्रिया में जन्म लेता हुआ साफ प्रतीत होता है। इस प्रतिक्रियात्मक दृष्टि ने जहाँ नाटक को साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध बनाया, वहाँ रंगमंच से उसकी कलात्मक मौलिकता से उसे एकदम काट दिया। एक बड़ी दयनीय और खतरनाक स्थिति यहीं से पैदा हो गई, नाटककारों में भी, समीक्षकों में भी। नाटक दो खानों में बट गया, साहित्यिक नाटक और रंगमंचीय नाटक। यह हास्यास्पद वर्गीकरण वर्षों तक चल रहा है आज भी। पाठ्यक्रमीय आलोचनात्मक पुस्तकों में, कक्षाओं में, अध्ययन अध्यापन में और परीक्षा पत्रों और परीक्षा पुस्तिकाओं में जो बड़ी घातक स्थिति है, नाटक और रंगमंच में संधिकालीन सोपानों का हिंदी में क्रमशः विकास ही नहीं हुआ। भारतेंदु काल को हिंदी नाटक और रंगमंच की दृष्टि से सार्थक सक्रियता और प्रयत्न का काल कहा जा सकता है। स्वयं भारतेंदु ने नाटक को परिचयात्मक स्तर पर ही नहीं, प्रयोगात्मक दृष्टि से भी देखा। उन्होंने ही पहली बार अपने निबंध नाटक में प्राचीन नाट्य कला और अर्वाचीन नाट्य कला का परिचय दिया। दोनों के नाट्य तत्वों का समन्वय करके कोई मानदंड उन्होंने भले ही स्थापित नहीं किए, क्योंकि उस समय बहुत से प्रश्न उनके सामने थे। हिंदी नाट्य लेखन, अनुवाद, प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, रंगमंच, नाट्य भाषा, जन जागरण, राष्ट्रीय चेतना और लोक रुचि के परिष्कार का सवाल, पारसी थिएटर के विरुद्ध लड़ाई। इसीलिए भारतेंदु के नाटक पारसी थिएटर के नाट्य तत्वों की सीमा में उतने बंधे हुए नहीं दिखते जितने कि प्रसाद के। भारतेंदु निरंतर थिएटराना जगत से अलग नई नाट्य परंपरा, भिन्न नाट्य शिल्प और हिंदी रंगमंच की स्वतंत्र विकास परंपरा के प्रति संघर्षशील रहे। परिणामतः भारतेंदु कालीन सभी नाटकों की दो विशेषताएं मुख्य लगती हैं। एक तो जनजीवन से उनकी निकटता और देशोद्धार के प्रति उनकी चेतना, दूसरे उनकी रंगमंच के प्रति, नाटक के माध्यम के प्रति सजगता। इसीलिए इस युग में जहाँ एक ओर इतिहास और पुराण से कथा वस्तु ली गई, वहाँ सीधे सीधे तत्कालीन जीवन से भी कथा वस्तु का चयन किया गया। इसीलिए उनमें अंधविश्वासों, कुरीतियों और धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और अनेक विडंबनाओं पर व्यंग और विद्रोह का भाव भी मिलता है। जन जीवन में गहरी पैठ तिलमिला देने वाले व्यंग ने और भारतेंदु की सतर्क दृष्टि और संवेदनशीलता ने एक ऐसी नाट्य भाषा को जन्म दिया जो बोलचाल की सरल मुहावरों से सजी भाषा तो थी ही, उनकी जिंदा दिली का प्रतीक भी थी। दर्शकों के मन से बल्कि लोकमानस से सीधे टकराने वाली थी। आज हम हिंदी नाटक में जिस सांकेतिकता का वैशिष्ट्य देखते हैं, वह इस काल के सभी नाटकों में अपने प्रायोगिक या आरंभिक रूप में मिलती है। भारत दुर्दशा, भारत जननी जैसे नाटक सांकेतिकता के ही उदाहरण हैं। सामाजिक यथार्थ को सामने लाने के लिए मूर्त तथा अमूर्त कथाओं को नाटकीय रूप देकर सांकेतिक शैली की आवश्यकता का अनुभव और आरंभ भारतेंदु से हुआ।